बाइबल व्याख्यान तीन की मैथ्यूसन कहानी पैगंबर 2024 देव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांड। बाइबल की कहानी पर डॉक्टर डेव मैथ्यूसन द्वारा दिए गए 6 में से यह तीसरा व्याख्यान है। इस तीसरे व्याख्यान में वह भविष्यवक्ताओं और 5 प्रमुख विषयों भूमि, वाचा, मंदिर, भगवान के लोग और राजत्व के विषयों को कवर करेंगे। डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, ठीक है, हम बाइबल की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने सुझाव दिया है कि यद्यपि पुराने और नए नियम में विभिन्न प्रकार की किताबें और साहित्यिक शैलियां शामिल हैं, जो अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग समय और स्थानों पर लिखी गई हैं। अंतर्निहित कथा या एक अंतर्निहित कहानी जो पुस्तकों को एकीकृत करती है, जिसे विभिन्न पुस्तकें प्रमाणित करती हैं। और फिर मैं यह सुझाव नहीं देना चाहता कि पुराने और नए टेस्टामेंट में प्रत्येक अंतिम कविता किसी तरह सीधे तौर पर कहानी पर प्रभाव डालती है या उससे संबंधित है, बल्कि मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि समग्र रूप से दस्तावेज और प्रमुख आंदोलन और प्रमुख विषय और प्रमुख उद्देश्य कई किताबें इस कहानी पर भरोसा करती हैं और इसका खुलासा करती हैं। और हमने कहा कि कहानी उत्पत्ति अध्याय 1, 2 और 3 तक जाती है। कहानी की शुरुआत या सेटिंग, जहां भगवान ब्रह्मांड के संप्रभु निर्माता के रूप में मानवता का निर्माण करते हैं, अपने लोगों का निर्माण करते हैं, ऐसे लोग जिनमें वह प्रवेश करेगा के साथ एक रिश्ते में, एक ऐसा रिश्ता जो पुराने नियम के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले अनुबंधित रिश्तों जैसा दिखता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करता है। वह उनके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। वह उन्हें भूमि सृजन एक दयालु उपहार के रूप में देता है, जिसे उन्हें रखना और संरक्षित करना होता है। वह मानवता को अदन के बगीचे में रखता है, उसका अभयारण्य, वह स्थान जहां भगवान अपने लोगों के साथ निवास करेंगे। उन्हें उसकी रक्षा करनी है और रखना है, और मानवता को ईश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करने, ईश्वर के शासन को फैलाने, उसकी महिमा को पूरी सृष्टि में फैलाने का आदेश दिया गया है। फिर भी हमने देखा कि मानवता इसमें असफल हो गई है और पाप के कारण आदम और हव्वा को भूमि से निर्वासित कर दिया गया है। इसलिए बाइबल के बाकी भाग उत्पत्ति अध्याय 4 से शुरू होकर उसके बाद यह कहानी होगी कि भगवान इसे कैसे बहाल करेंगे, उत्पत्ति 1 और 2 को कैसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। लेकिन हमने यह भी देखा कि समस्त सृष्टि के लिए अपने इरादे को बहाल करने का परमेश्वर का प्राथमिक साधन इज़राइल राष्ट्र को चुनने पर केंद्रित था। तो भगवान इब्राहीम को बुलाता है, और फिर वे सभी प्रमुख विषय जो भगवान अब एक लोगों का निर्माण करने जा रहे हैं, वह उन्हें आशीर्वाद के स्थान के रूप में भूमि देने जा रहे हैं और वह मंदिर के रूप में उनके साथ रहने भी जा रहे हैं। वह इब्राहीम के माध्यम से और फिर मूसा के माध्यम से लोगों के साथ एक अनुबंध संबंध में भी प्रवेश करता है। लोगों को परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करना है, उन्हें संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर के शासन को प्रतिबिंबित करना है, जो अंतः डेविड वंश के राजा के माध्यम से घटित होगा, जो लोगों पर शासन करेगा और लोगों की खातिर संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर के शासन का प्रसार करेगा। तो आम तौर पर बाइबल की कहानी इस बारे में है कि कैसे सारी सृष्टि परमेश्वर के लिए उसके द्वारा बनाए गए लोगों के साथ रहने का स्थान बन सकती है। और फिर मैं उन मुट्ठी भर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हम सृष्टि वृत्तांत से इज़राइल के इतिहास और अब आज भविष्य वक्ताओं की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इज़राइल का इतिहास मूल रूप से ईडन गार्डन में आदम और हव्वा के जैसा था। जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया और वाचा और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को निभाने में असफल रहे, उसी तरह इज़राइल भी परमेश्वर के साथ वाचा के रिश्ते को निभाने में विफल रहे और वे भी उस भूमि से निर्वासित हो गए जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी और परमेश्वर की उपस्थिति से। तो कहानी अभी भी बिना किसी निष्कर्ष के बनी हुई है और वह यह है कि सारी सृष्टि अपने लोगों के साथ ईश्वर का निवास स्थान कैसे बन सकती है। और इसलिए वे पांच मुख्य विषय जिन्हें हम सृष्टि के माध्यम से और फिर इसराइल की कहानी में खोजते हैं, जो दोनों विफलता के साथ समाप्त होते हैं, हम अब भविष्यवक्ताओं का पता लगाना चाहते हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि कैसे भविष्यवक्ता इस उम्मीद में एकजुट हैं कि भगवान उत्पत्ति से अपने इरादे को पूरा करेंगे। एक और दो मानवता और समस्त सृष्टि के लिए। अब मुख्य विषय जिन्हें हम देखना चाहते हैं, विषयों का समूह भगवान के लोग हैं, वह वाचा जो भगवान उनके साथ स्थापित करते हैं, भूमि और सृष्टि जो भगवान उन्हें अपने अनुग्रहपूर्ण उपहार के रूप में देते हैं, मंदिर, उद्यान, स्थान, परमेश्वर के निवास और उसके लोगों के साथ उपस्थिति और फिर राजत्व का भी। उत्पत्ति अध्याय 3 में मानवता के पाप के कारण उस समय से मानवता अपने राजत्व और नियमों का अहंकार करती है और उस निर्माता की उपेक्षा करके उस नियम का दुरुपयोग करती है जिसका उन्हें प्रतिनिधित्व करना है। इसके अलावा बाइबल स्पष्ट है कि मानवता के पाप के कारण, क्योंकि आदम और हव्वा को उत्पत्ति 1 और 2 में शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया था, अब राज्य बन गया है, दुनिया शैतान और बुराई का राज्य बन गई है। तो कहानी फिर से इस बारे में है कि भगवान इस स्थिति को कैसे बचाएगा। ईश्वर दुनिया को शैतान के शासन से कैसे बचाएगा और जिस तरह से मानवता सृष्टि पर अपने शासन का दावा करती है, ईश्वर उसे कैसे बचाएगा और पूरी सृष्टि में अपना शासन कैसे फैलाएगा। और एक बार फिर सृष्टि को एक ऐसी जगह बनाए जहां मानवता रह सके और जहां भगवान उनके साथ उनके बीच में रह सके, एक ऐसी जगह जहां भगवान का शासन पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है और भगवान अब अपने लोगों के साथ अनुबंधित रिश्ते में हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में वे हैं, उसकी महिमा फैलाओ। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का शासन संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। वह वास्तविकता कैसे बनती है? अब जब आदम और हव्वा विफल हो गए हैं, अब जब इसराइल विफल हो गया है, तो भविष्यवक्ता मूल रूप से इसराइल की स्थिति, इसराइल के लंबित निर्वासन या उनके पापीपन के कारण निर्वासन में इसराइल की स्थिति को संबोधित करते हैं। और फिर भविष्यवक्ता क्या करते हैं? वे संभावना को संबोधित करते हैं या वे एक चित्र चित्रित करते हैं जो निर्वासन में उनकी स्थिति से परे बहाली की संभावना को स्पष्ट करता है। इसलिए इसराइल अपने पापों के कारण, मूर्ति पूजा के कारण निर्वासन में चला जाएगा या पहले से ही निर्वासन में है, क्योंकि उन्होंने वाचा तोड़ दी है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में आदम और हव्वा ने किया था। लेकिन अब भविष्यवक्ताओं ने उस समय की आशा की थी जब ऐसा होगा बहाल किया जाए। अब याद रखें कि हमें पुनर्स्थापन की इस कहानी पर 2 पहलुओं के रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसराइल उत्पत्ति 1 और 2 से संपूर्ण सृष्टि की बहाली लाने का ईश्वर का साधन था, और क्योंकि इसराइल ने इसे भी नष्ट कर दिया था, इसलिए ईश्वर को इसराइल और सृष्टि दोनों को पुनर्स्थापित करना होगा। इसराइल की पुनर्स्थापना वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर सारी सृष्टि को पुनर्स्थापित करेगा। इसलिए इसराइल को पुनर्स्थापित करना, इसराइल की कहानी उत्पत्ति 1 और 2 से संपूर्ण सृष्टि के साथ ईश्वर के व्यवहार की कहानी को समझने की कुंजी है। और हम देखेंगे कि यह भविष्यवाणी साहित्य में कैसे काम करता है। लेकिन जब हम भविष्यवक्ताओं को संक्षेप में देखते हैं, तो मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि जब हम साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो मैं फिर से हर एक भविष्यवाणी पुस्तक को नहीं छूऊंगा, बल्कि इसके बजाय मैं सिर्फ आपको बताने के लिए साहित्य के प्रमुख हिस्सों को छूना चाहता हूं। मैं जो सोचता हूं उसका अर्थ अन्य भविष्य सूचक पाठों में पाया जा सकता है, और यह प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे ये 5 विषय जो सृष्टि में शुरू होते हैं, इसराइल की कहानी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, इब्राहिम से शुरू होकर और फिर मूसा और इसराइल की कहानी में, कैसे वे सभी 5 विषय भविष्यवाणी की उम्मीद में फिर से उभरे हैं कि भगवान वास्तव में पूरी सृष्टि के लिए और इसराइल के लिए भी अपने इरादे को बहाल करेंगे, मुख्य रूप से इज़राइल को बहाल करेंगे ताकि अंततः पूरी सृष्टि को बहाल किया जा सके। पहला विषय जिस पर मैं गौर करना चाहता हूं वह है परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना। यह पूरे भविष्यवाणी पाठ में बिल्कुल स्पष्ट है और अधिकांश भविष्यवाणी पाठ जो इज़राइल को निर्वासन में जाने वाले या निर्वासन में इज़राइल को संबोधित करते हैं वे सभी उस समय की आशा करते हैं जब भगवान स्वयं अपने लोगों को अपने साथ रिश्ते में वापस लाएंगे। इसलिए लोगों को बिखरे हुए के रूप में देखा जाता है, लोगों को निर्वासन के कारण बिखरे हुए के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब भविष्यवाणी पाठ एक ऐसे समय की आशा करता है जब भगवान के लोग भगवान के एक लोगों के रूप में वापस इकट्ठे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 60 जैसा पाठ स्पष्ट रूप से निर्वासन से परे भगवान के लोगों की बहाली को संदर्भित करता है। अध्याय 60 शुरू होता है, उठो चमको क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर अंधियारा छा जाएगा और प्रजा पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु प्रभु तुम्हारे ऊपर उठेगा और उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। परमेश्वर के प्रकाश और उसकी महिमा और लोगों के साथ उसकी उपस्थिति के विषय पर ध्यान दें। फिर पद 3, राष्ट्र तुम्हारे प्रकाश में आएंगे और उनके राजा आपके भोर की चमक। अपनी आंखें उठाएं और चारों ओर देखें, वे सब इकट्ठे होते हैं। इसराइल के लोगों के संदर्भ में वे निर्वासन के कारण तितर बितर हो गए हैं। वे सभी इकट्ठे होते हैं, वे तुम्हारे पास यरूशलेम को आते हैं। आपका बेटा दूर से आएगा और आपकी बेटी को उनकी नर्सों की गोद में ले जाया जाएगा। और आप यशाया अध्याय 60 और भगवान की इस भावना से अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो निर्वासन के दौरान तितर बितर हो गए हैं और उन्हें पुनर्स्थापित कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, उन्हें फिर से उसके लोग बनने के लिए। एक और पाठ, और मैं जो कर रहा हूँ वह बस कई भविष्य सूचक ग्रंथों को पढ़ना और उन पर टिप्पणी करना है, लेकिन यहेजकेल अध्याय 36 और छंद 9-11। फिर से भगवान की बहाली के विषय पर ध्यान दे लोग, और ध्यान दें कि यह इस पुनर्स्थापना को चल रही कहानी के साथ कैसे जोड़ता है जिसे हमने अब तक देखा है। अध्याय 36 और 9-11। देख, मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरी ओर फिरूंगा और तू जोता और बोया जाएगा। अब यह सुनो, और मैं तेरी जनसंख्या और सारे घराने को बढ़ा दूंगा इज़राइल का। यह सब नगर बसाया जाएगा, उजाड़ फिर बसाया जाएगा, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु बहुत बढ़ाऊंगा। वे बढ़ेंगे और फलवंत होंगे, और मैं तुम्हें पहले के समान आबाद करूंगा और तुम्हारा पहले से भी अधिक भला करूंगा। फिर से ध्यान दें, विशेष रूप से श्लोक 10 और 11 में लोगों को बढ़ाने की भाषा, उनमें से फलदायी और बढ़ने वाले हैं। फिर यह परमेश्वर के लोगों आदम और हव्वा को उत्पत्ति अध्याय 1 में दिए गए आदेश की भाषा है कि वे फलदायी होंगे और बढ़ेंगे। अब एक बार फिर जब ईश्वर मानवता के फलने फूलने और बहुगुणित होने के अपने इरादे को पूरा करने के लिए अपने लोगों को पुनर्स्थापित करता है तो उसे इज़राइल द्वारा पूरा किया जाना था, इज़राइल की कहानी। अब भगवान अपने लोगों को ऐसी स्थिति में पुनर्स्थापित करते हैं जहां वे फलदायी होंगे, जहां वह उन्हें फलदायी बनाएंगे और उनकी संख्या में वृद्धि और वृद्धि करेंगे, जैसा कि सृजन कथा में उनका मूल इरादा था। यहेजकेल के अगले अध्याय अध्याय 37 में भी निर्वासन से लोगों की वापसी, निर्वासन से लोगों की बहाली की भविष्यवाणी की गई है। यहां भविष्यवक्ता ईश्वर सूखी हड्डियों या मृत हड्डियों की छवि के माध्यम से यहेजकेल से संवाद करता है, जो अब एक साथ आते हैं और पुनर्जीवित होते हैं और जीवन देते हैं। और मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह यह है कि ध्यान दें, मैं यहेजकेल अध्याय 37 के छंद 7-10 तक शुरू करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अंतिम कुछ छंदों पर ध्यान दें। यहेजकेल ने कहा, जैसा मुझे आज्ञा दी गई थी वैसा ही मैंने भविष्यवाणी की। और जैसा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा था, अचानक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी और जो हड्डियां उसने चारों ओर पड़ी देखी वे निर्वासन के कारण, आशीर्वाद की भूमि और परमेश्वर के निवास स्थान से अलग होने के कारण इसराइल की मृत्यु का प्रतीक थी। अब ये हड्डियां एक साथ आ गई, हड्डी से हड्डी। मैंने दृष्टि की और उन पर नसें थीं और मांस उन पर चढ़ गया था और वे चमड़े से ढक गए थे परंतु उनमें सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, सांस से भविष्यद्वाणी कर हे मनुष्य, और सांस से कह प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे सांस चारों ओर से आ और इन मारे हुओं पर सांस डाल कि वे जीवित हो जाएं। जैसा उसने मुझे आज्ञा दी मैंने भविष्यद्वाणी की और उनमें श्वास आ गई और वे जीवित होकर अपने पांवों पर खड़े हो गए, अर्थात एक बड़ी भीड़ और दो, लेकिन उनके बेजान शरीरों में जीवन फूंकने वाले ईश्वर की कल्पना पर ध्यान दें। तो आपके पास ये सूखी हड्डियां हैं जो ऊपर उठती हैं और वे मांस और नसें भी लेती हैं, लेकिन उन्हें जीवन देने के लिए कोई सांस नहीं थी, जितना कि उनमें थी सृजन कथा जहां ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और धरती की धूल से आदम को बनाया, फिर भी उसे मानवता में जीवन फूंकना है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं वास्तव में ईजेकील अध्याय 37 में एक नई रचना, जैसे भगवान ने अपने मनुष्यों को फिर से बनाया, जैसे भगवान ने अपने लोगों को फिर से बनाया, जैसा कि उन्होंने अपनी सांस के माध्यम से बेजान शरीरों को जीवन देकर सृष्टि कथा में किया था। बस आपको किसी अन्य भविष्यवाणी पाठ की एक झलक देने के लिए या किसी अन्य भविष्यवाणी पाठ से एक उदाहरण देने के लिए जकरयाह अध्याय 8 निर्वासन से भगवान के लोगों की बहाली की भी आशा करता है। जकरयाह अध्याय 8 श्लोक 7 और 8 में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा को पूर्व देश से और पश्चिम देश से बचाऊंगा, मैं उन्हें यरूशलेम में रहने के लिए वापस लाऊंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं सच्चाई और धर्म से उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो स्पष्ट रूप से जकरयाह भी परमेश्वर के लोगों की बहाली की आशा करता है जहां वे अनुबंधित रिश्ते में उसके लोग होंगे। ध्यान दें कि परमेश्वर के लोगों के विषय को वाचा के विषय से अलग और अलग नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दें कि जकरयाह की पुनर्स्थापना की प्रत्याशा का एक हिस्सा यह है कि भगवान वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका भगवान बनूंगा, वाचा का सूत्र जिसे आप पुराने नियम में कहीं और पाते हैं। तो इसराइल के लिए भगवान के इरादे को प्रतिबिंबित करने और अंतः सृजन के लिए भगवान के इरादे को प्रतिबिंबित करने में भविष्यवाणी की उम्मीद का एक हिस्सा उन लोगों की बहाली है जो संख्या में असंख्य होंगे और जिन्हें भगवान के लोगों के रूप में बनाया और जीवन दिया जाएगा और जो एक अनुबंध में प्रवेश करेंगे स्वयं भगवान के साथ संबंध। फिर यह दूसरे विषय की आशा करता है जिसे मैं देखना चाहता हूँ और वह अनुबंध का विषय है। हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में देखा कि वाचा वह प्रमुख तरीका था जिसके द्वारा ईश्वर अपने लोगों से संबंधित होता था। यह उधार लिया गया था। वाचा की कल्पना आधिपत्य संबंधों या प्राचीन निकट पूर्व की आधिपत्य संधियों को दर्शाती है और इसलिए ईश्वर को सभी चीजों के निर्माता शासक के रूप में चित्रित किया गया है जो अब अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करता है। वह उन्हें अपनाता है या उन्हें अपने लोगों के रूप में चुनता है और अब उन्हें आशीर्वाद देगा। लेकिन हमने देखा कि अनुबंध संबंध और इस बात पर विवाद है कि क्या उत्पत्ति 1 और 2 को अनुबंध कहा जाना चाहिए, लेकिन कम से कम अनुबंध संबंध के सभी तत्व मौजूद हैं। और बाद में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो अनुबंधित रिश्ते स्थापित किए वे सृष्टि के समय आदम और हव्वा के साथ उसके रिश्ते से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन जो वाचा हमने मूसा के साथ देखी थी वह वाचा इतनी विफल नहीं हुई, लेकिन लोग वाचा के रिश्ते को निभाने में विफल रहे और इसलिए उन्हें ईडन गार्डन से भूमि से निर्वासित कर दिया गया, ताकि तब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर एक नई वाचा स्थापित करने का वादा करे। परमेश्वर एक बार फिर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा जो पुरानी वाचा की तरह विफल नहीं होगी या इससे भी बेहतर, जैसा कि लोगों ने पुरानी वाचा के साथ किया था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ नई वाचा स्थापित करेगा और कई भविष्य सूचक ग्रंथ इसकी आशा करते हैं। हमने पहले ही जकरयाह 8 और पद 8 पढ़ा है, जब वह कहता है, मैं उन्हें अपनी प्रजा के देश में बसाऊंगा, वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह उस अनुबंध सूत्र के केंद्र में है जिसे हम पूरे पुराने नियम में पाते हैं। लेकिन पुराने नियम के अन्य ग्रंथ भी हैं जो स्पष्ट रूप से ऐसे समय की आशा करते हैं जब भविष्य में भगवान अपने लोगों को पुनर्स्थापित करके उनके साथ एक नई वाचा का संबंध स्थापित करेंगे। इसलिए उदाहरण के लिए यिर्मयाह अध्याय 31 में, जो नई वाचा से संबंधित एक प्रकार का क्लासिक पाठ है, विशेष रूप से क्योंकि लेखक इस रिश्ते का वर्णन करने के लिए नई वाचा शब्द का उपयोग करता है जिसे भगवान अपने लोगों के साथ फिर से स्थापित करेगा। परंतु यिर्मयाह अध्याय 31 और पद 31 से 34 तक यहोवा की यही वाणी है, ऐसे दिन अवश्य आते हैं जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान नहीं होगा जो मैंने उसके पूर्वजों के साथ बांधी थी, अर्थात मूसा की वाचा, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, वह वाचा जिसे उन्होंने तोड़ दिया, यद्यपि मैं उनका पति था, यहोवा की यही वाणी है। परंतु उन दिनों के बाद मैं इसराइल के घराने से यही वाचा बांधूंगा, यहोवा का यही वचन है। मैं अपना नियम उनके भीतर समवाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तो अनुबंध सूत्र पर ध्यान दें। वे अब एक दूसरे को न सिखाएंगे, न एक दूसरे से कहेंगे, नहीं, हे प्रभु, क्योंकि छोटे से बड़े तक वे सब मुझे जान लेंगे, यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। तो यह फिर से यिर्मयाह के उस समय के संदर्भ में घटित होता है जब इसराइल को निर्वासन से बहाल किया जाएगा और भगवान प्रवेश करेंगे, एक नई वाचा के माध्यम से अपने वाचा संबंध को नवीनीकृत करेंगे, जहां भगवान का कानून अब वास्तव में उनके दिलों पर लिखा गया है। हालांकि एक अन्य पाठ जो एक नई वाचा की भी आशा करता है, हालांकि फिर भी वाचा शब्द की भाषा का उपयोग नहीं किया गया है, वाचा की भाषा स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर है और वह यहेजकेल की पुस्तक है, जो एक की भी आशा करती है, परमेश्वर के लोगों की बहाली का समय, निर्वासन से बहाली। उदाहरण के लिए यहेजकेल अध्याय 34 और श्लोक 25 में इस पुनर्स्थापना की आशा करते हुए परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, मैं उनके साथ, इसराइल के लोगों के साथ, शांति की वाचा बनाऊंगा और जंगली जानवरों को भूमि से निकाल दूंगा ताकि वे इसमें रह सकें। जंगली और जंगल में सुरक्षित रूप से सो जाओ। लेकिन एक अनुबंध की प्रत्याशा पर ध्यान दें, जिसे बाद में उठाया जाता है और अधिक विस्तार से वर्णित किया जाता है। तो अध्याय 36 अभी भी भगवान द्वारा अपने लोगों की बहाली की आशा कर रहा है। अध्याय 36 और श्लोक 25 और 26 मैं पीछे हटूंगा और 24 से शुरू करूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्र से ले जाऊंगा। तो यहां भगवान के लोगों की बहाली का विषय है। मैं तुमको उन जातियों में से जो बंधुआई के कारण तितर बितर हो गई हैं निकालूंगा और सब देशों में से तुम्हें इकट्ठा करके तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा। और यहां नई वाचा की भाषा है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम अपने सारे पापों और सारी अशुद्धता से शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुझे तेरी सब मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और मैं तेरे शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर तुझे मांस का हृदय दूंगा। अध्याय 37 और पद 26 और 27 मेरा निवास इसराइल और उसकी प्रजा उनके बीच रहेगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। पुनः ध्यान दें अनुबंध सूत्र। तब जाति जाति जान लेगी कि मैं यहोवा इसराइल को पवित्र करता हूँ, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सर्वदा बना रहेगा। इसलिए नई वाचा वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर अंतः इसराइल की पाप पूर्णता और अंतः संपूर्ण विश्व की पाप पूर्णता से निपटेगा, क्योंकि वह अपने लोगों की स्थापना और पुनर्निर्माण करता है और अपने मूल की पूर्ति में फिर से उनके साथ एक वाचा संबंध में प्रवेश करता है। सृष्टि के आरंभ से ही मानवता के लिए इरादा। इसलिए प्राथमिक साधन जिसके द्वारा भगवान अपने लोगों से निपटेंगे और अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेंगे, एक नई वाचा की स्थापना के माध्यम से है, जहां वह अपने लोगों को पाप से शुद्ध करेंगे और उन्हें अपने लोगों के रूप में फिर से स्थापित करेंगे। वह उनका परमेश्वर होगा, वे एक बार फिर उसके लोग होंगे। वाचा का यह विषय और परमेश्वर के लोग भी स्पष्ट रूप से अगले विषय से संबंधित है, और वह भूमि का विषय है। हम पहले ही यशायाह अध्याय 60 और पद 4, साथ ही जकर्याह 8 मार्ग जैसे पाठ पढ़ चुके हैं, जहां भगवान लोगों को भूमि पर वापस लाएंगे। इसलिए लोगों के लिए परमेश्वर की पुनर्स्थापना का उद्देश्य उन्हें अपनी भूमि पर वापस लौटाना है, जिसके बारे में हमने कहा कि यह इब्राहिम से किए गए परमेश्वर के वादे का हिस्सा था, जिसके बारे में हमने कहा कि यह सृष्टि तक जाता है, भूमि के लिए परमेश्वर का अनुग्रहकारी प्रावधान आशीर्वाद देने का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां भगवान अंततः अपने लोगों के साथ निवास करेंगे या निवास करेंगे। तो ध्यान दें कि भूमि पर वापसी कितनी बार भविष्यवाणी की अपेक्षा में भूमिका निभाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले देखने के लिए एक पाठ यिर्मयाह अध्याय 4 में मैं चाहता हूं कि आप सृजन के इस मूल भाव के प्रतिबिंब पर ध्यान दें, और यह समझना महत्वपूर्ण है जब आप भविष्यवाणी साहित्य को देखते हैं और यह भूमि पर लौटने के बारे में बात करता है। इसे न केवल इब्राहिम और इसराइल की कहानी के साथ जोड़कर देखा जाता है, बल्कि यह अक्सर इसे सृष्टि से भी जोड़ता है। वास्तव में इसराइल के निर्वासन को अराजकता की वापसी, एक विसृजन जैसे कि पूर्वोत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 की वापसी के रूप में देखा जाता है। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 4 और पद 23 से 26 पर ध्यान दें, और ध्यान दें कि भाषा कैसी है। उत्पत्ति अध्याय 1 का विचारोत्तेजक, और पृथ्वी निराकार और शून्य और जीवनहीन है, और फलने फूलने की प्रतीक्षा कर रही है, और लोगों के लिए रहने योग्य वातावरण बनने की प्रतीक्षा कर रही है। तो ये है वनवास का वर्णन। और फिर विसृजन, अराजकता और अराजक पूर्वरचनात्मक स्थिति में वापसी के साथ संबंधों पर ध्यान दें। पद 23, मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की, वह नीची और सुनसान थी, और आकाश की ओर देखा, और उनमें कोई प्रकाश न था। मैंने पहाड़ों और निचले इलाकों में देखा, वे कांप रहे थे, और सभी पहाड़ियां इधर उधर हिल रही थीं। मैंने दृष्टि करके देखा कि वहां कोई नहीं है, और आकाश के सब पक्षी उड़ गए हैं। मैंने दृष्टि करके क्या देखा कि उपजाऊ भूमि मरुभूमि बन गई, और यहोवा के भड़के हुए क्रोध के कारण उसके सामने सब नगर खंडहर हो गए। तो फिर से भाषा पर ध्यान दें, किस प्रकार की निर्माणविहीन भाषा या अराजकता की ओर वापसी, ईडन पूर्व की स्थिति। कोई फल नहीं है, स्वर्ग में कोई रोशनी नहीं है, पहाड़ कांप रहे हैं, और चीजें खाली और शून्य हैं जो एक नए रचनात्मक कार्य की प्रतीक्षा कर रही हैं। और इसलिए भूमि पर वापसी को अक्सर एक नई रचना या एक नए रचनात्मक कार्य के रूप में चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 51 और ये सभी पाठ जो मैं भविष्यवाणी साहित्य से पढ़ने जा रहा हूँ, सभी इसराइल की भूमि पर वापसी के संदर्भ में हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि वे इब्राहिम से किए गए वादे के साथ साथ ईडन और उत्पत्ति अध्याय 1 की सृष्टि दोनों से कैसे जुड़े हैं। तो यशायाह अध्याय 51 और पद 2 और 3, मैं पद से शुरू करूंगा। एक, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, मेरी सुनो। उस चट्टान पर दृष्टि करो जिसमें से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम खोदे गए। अपने पिता इब्राहीम और सारा जो तुझे जन्मा, उस पर दृष्टि कर, क्योंकि जब मैंने उसे बुलाया तब वह एक ही था, परंतु मैंने उसे आशीष दी और बहुत कर दिया। इसलिए भूमि पर इज़राइल की बहाली स्पष्ट रूप से अब्राहमिक वाचा से जुड़ी हुई है। परंतु अब यशायाह 51 का पद 3, क्योंकि यहोवा सियोन को शांति देगा, वह उसके सब उजड़े स्थानों को शांति देगा, और उसके जंगल को अदन के समान और उसके जंगल को यहोवा की बारी के समान बनाएगा। उसमें आनंद और आनंद, धन्यवाद और गीत का स्वर पाया जाएगा। इसलिए भूमि की बहाली को ईडन के बगीचे की बहाली के रूप में देखा जाता है, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से ईडन जैसी स्थितियों की वापसी। इसलिए फिर से इज़राइल की निर्वासन से भूमि पर वापसी को दोनों की पूर्ति के रूप में देखा जाता है, इब्राहीम की वाचा और वादा, लेकिन यह भी वादा कि उसके कई पूर्वज होंगे और भगवान उन्हें भूमि पर ले जाएगा, वह उन्हें भूमि देगा, लेकिन मानवता के रहने के लिए भगवान के इरादे की बहाली के रूप में उसे ईडन से भी जोड़ा जाएगा। पृथ्वी भूमि पर फलवंतता का स्थान और आशीष का स्थान है। हालांकि भविष्यवाणी साहित्य में अन्य पुराने नियम के ग्रंथ भी हैं जो इज़राइल की भूमि पर वापसी और ईडन के साथ बहाली और इब्राहीम से किए गए वादे, इज़राइल की कहानी दोनों को जोड़ते हैं। ईजेकील अध्याय 36, इस खंड में कई छंद हैं जो स्पष्ट रूप से न केवल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भूमि का अक्सर उल्लेख करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन दोनों को इब्राहीम के वादे से जोड़ते हैं, बल्कि ईडन के बगीचे तक भी जाते हैं। अत अध्याय 36 आरंभ श्लोक 4, इसलिए हे इसराइल के पहाड़ों, अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से यों कहता है, रास और अराजकता के विपरीत फलदाई और पानी की भाषा है। इसलिए प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से यों कहता है, निःसंदेह पानी घाटियों, उजाड़ स्थानों और निर्जन नगरों में है, जो लूट का स्रोत और चारों ओर के अन्य राष्ट्रों के लिए उपहास का विषय बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी जलती हुई जलन के कारण बाकी जातियों और सारे एदोम के विरुद्ध बोल रहा हूँ, जिन्होंने पूरे मन से आनंद और घोर तिरस्कार करके मेरे देश को लूटने के लिए उसके चरागाह के कारण अपने अधिकार में कर लिया। इस कारण इसराइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों और टीलों और जल के नालों और घाटियों से कहो, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं अपने क्रोध में बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने अन्य जातियों से अपमान सहा है। इसलिए परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं शपथ खाता हूँ कि जो जातियाँ तेरे चारों ओर हैं, वे आप ही अपमान सहेंगे। परंतु हे इसराइल के पहाड़ों, तुम अपनी डालियाँ फैलाओगे, इस प्रकार फलदाई का विषय यहाँ आता है, और अपना फल मेरी प्रजा इसराइल को दोगे, क्योंकि वे शीघ्र ही घर आएंगे। इसलिए भगवान के लोगों की बहाली से जुड़ा हुआ है। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तेरी ओर फिरूंगा और तू जोता और बोया जाएगा, और मैं तुम्हारी जनसंख्या बढ़ा दूंगा, और इसराइल का सारा घराना वरन सारा नगर बसाया जाएगा, और खंडहरों को फिर बसाया जाएगा, और मैं तुम पर मनुष्यों और पशुओं को बहुत बढ़ाऊंगा, वे बढ़ेंगे और फलदाई होंगे, और मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा और पहले से भी अधिक भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इसराइल, तुझ पर लोगों का नेतृत्व करूंगा, और वे तुझ पर अधिकार करेंगे, और तू उनका निज भाग होगा। जो इस वादे को दर्शाता है कि इब्राहीम के वंशजों को भूमि विरासत में मिलेगी, फिर तुम उन्हें बालक की नाई फिर न त्यागोगे। यहेजकेल के अध्याय 36 श्लोक 28 में एक बात का पाठ। फिर यह सब निर्वासन से बहाली के संदर्भ में है। वह कहता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा और पद 27 पढ़ूंगा। मैं अपनी आत्मा, वह नई वाचा का पाठ, तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें मेरी विधियों का पालन कराऊंगा और मेरे नियमों का पालन करने में सावधान रहूंगा। अब ये सुनो, तब तुम उस देश में वास करोगे जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया है। तो वाचा की भाषा इसराइल के उनके देश में रहने से जुड़ी हुई है, जो पूर्वजों से किए गए वादे से, इब्राहिम से किए गए वादे से जुड़ी हुई है। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। फिर से अनुबंध सूत्र श्लोक 30। कुछ श्लोकों के बाद मैं वृक्ष का फल और खेत की उपज बहुतायत से बढ़ाऊंगा। फलदायी भाषा पर ध्यान दें जो अदन तक जाती है, ताकि आपको राष्ट्रों के बीच फिर कभी अकाल का अपमान न झेलना पड़े। श्लोक 34 और श्लोक 35 ये अंतिम दो श्लोक हैं जिन्हें मैं इस खंड में पढ़ूंगा। जो भूमि उजाड़ थी उसे जोता जाएगा, बजाय इसके कि वह उजाड़ हो, जैसा कि वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की दृष्टि में था। और वे कहेंगे, जो देश उजाड़ था वह अदन की बारी के समान हो गया है। और खंडहर और उजाड़ नगर अब बसाए गए और दृढ़ किए गए हैं। तो फिर इसराइल की यह भाषा उस भूमि पर बहाली है जो पहले मृत्यु और अराजकता और विनाश में से एक थी, जिसे अब फल और आशीर्वाद की स्थिति में बहाल किया जाएगा, जैसा कि ईडन के बगीचे में था और भगवान के वादों को पूरा करने में था। इब्राहिम से कहा कि उसके लोग भूमि के अधिकारी होंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 केवल आपको यह दिखाने के लिए कि अन्य भविष्य सूचक ग्रंथों में इब्राहिम या ईडन से किए गए वादे के संदर्भ में भूमि की बहाली का विषय शामिल है। अध्याय 31 यिर्मयाह 31 और पद 12। फिर से पुनर्स्थापना और परमेश्वर के लोगों के विषय पर ध्यान दें। वे आकर सियोन की चोटी पर ऊंचे स्वर से गाएंगे और यहोवा की भलाई के कारण अन्न, दाखमधु, तेल और भेड़बकरियों और गाय बैलों के बच्चों के कारण प्रसन्न होंगे। उनका जीवन सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी सूखेंगे नहीं। इसलिए यहाँ तक कि यिर्मयाह ने इसराइल की अपनी भूमि पर वापसी का वर्णन करने के लिए एडेनिक कल्पना का सहारा लिया, जिसका वादा परमेश्वर ने उन्हें पूरा करने के लिए किया था। फिर न केवल इब्राहिम से किया गया वादा, बल्कि अंतः उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से मानवता के लिए भगवान की मंशा। आखिरी पाठ जिसे मैं देखना चाहता हूँ, और कई और भी हैं, यशायाह के पास उनमें से कई हैं, लेकिन एक जो मैं बस एक पल के लिए यशायाह अध्याय 65 और श्लोक 17 से 20 पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यशायाह अब भी उस समय की आशा कर रहा है, यहाँ तक कि निर्वासन से भी परे, जब भगवान के लोग अंतः बहाल हो जाएंगे। और यह दिलचस्प है कि यशायाह क्या करता है। यशायाह अब पुनर्स्थापना के एक दिन की आशा करने जा रहा है, जो फिलिस्तीन की भूमि पर इसराइल की वापसी से अधिक होगा, लेकिन अब वह अंतः एक नई रचना के संदर्भ में पुनर्स्थापना की कल्पना करने जा रहा है। तो अध्याय 65 और श्लोक 17 से शुरू करते हुए यशायाह कहता है, क्योंकि मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ। उत्पत्ति अध्याय 1 के साथ समानता पर ध्यान दें। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। नया आकाश और नई पृथ्वी रचने पर है। पहली बातें स्मरण न रहेंगी और न स्मरण में आएंगी, परंतु जो कुछ मैं बना रहा हूँ उससे आनंदित और सर्वदा मगन रहना, क्योंकि मैं यरूशलेम को आनंदमय और उसकी प्रजा को आनंदमय बनाने पर हूँ। तो लोगों को फिर से बनाने और लोगों को पुनर्स्थापित करने के विषय पर ध्यान दें। मैं यरूशलेम में आनंद करूंगा और अपनी प्रजा से प्रसन्न रहूंगा। उसमें फिर रोने पीटने का शब्द या संकट की चिल्लाहट सुनाई न देगी। अब अगले 2 या 3 छंद जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से ईडन और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 सृजनात्मक भाषा पर ध्यान दें। पद 20 यशायाह अध्याय 65, उसमें फिर कोई शिशु न होगा जो मर जाए, परंतु कुछ दिन का हो, वह ऐसा बूढ़ा हो जो जीवन भर जीवित न रहे। और याद रखें कि श्राप का एक भाग मानवता पर मृत्यु लाना था। तो उत्पत्ति अध्याय 5 से शुरू करके और उसके बाद हर कोई जो कोई भी है मर जाता है, और आपके पास यह बार बार दोहराया जाता है, और फलाना मर गया और फलाना मर गया। अब आप मृत्यु को उल्टा होता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसा कोई शिशु नहीं होगा जो केवल कुछ दिन ही जीवित रहता हो, या कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होगा जो जीवन भर जीवित न रहा हो। क्योंकि जो 100 वर्ष पर मरेगा वह जवान समझा जाएगा, और जो 100 वर्ष से कम हुआ वह अभिशाप समझा जाएगा। वे घर बनाकर उनमें निवास करेंगे, वे दाख की बारियां लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। फिर से ईडन की फलदायिता को याद करते हुए, वे निर्माण न करें और दूसरा उसमें निवास न करें। ऐसा न हो कि वे पौधे लगाएं और दूसरा खाए, जैसा कि तब हुआ था जब वे निर्वासन में निकाले गए थे। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी, और मेरे चुने हुए लोग लंबे समय तक अपने हाथ के कामों का आनंद उठाते रहेंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न विपत्ति के लिए संतान उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा की ओर से धन्य संतान होंगे, और उनकी संतान भी धन्य होगी। तो ध्यान दें, यशाया पुनर्स्थापना के एक ऐसे समय की आशा करता है जो उस समय से भी अधिक होगा जब इसराइल को निर्वासन में बहाल किया गया था। यानी वह उत्पत्ति अध्याय 1 में पहले रचनात्मक कार्य के आधार पर एक नई रचना की आशा करता है। और फिर ईडन कल्पना पर ध्यान दें कि यह फलदाई का समय होगा, मृत्यु के अभिशाप को उलटने का समय फलदाई का समय होगा। और श्लोक 22 में एक और दिलचस्प बात क्या है, जहां यह कहा गया है, क्योंकि मेरे लोगों के दिन वृक्ष के दिनों के समान होंगे। सेप्टुआजेंट पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद वास्तव में कहता है, जीवन के वृक्ष के दिनों के समान, जो कि सटीक शब्द है जो आपको उत्पत्ति से मिलता है, जीवन का वृक्ष जो बगीचे के केंद्र में है। तो स्पष्ट रूप से यशाया पुनर्स्थापना के समय की आशा करता है जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 और पहली रचना और अदन के बगीचे की स्थितियों में वापसी होगी। तो फिलिस्तीन की भूमि को जोड़ने और ईश्वर के लोगों की उनकी भूमि और ईडन में वापसी से पता चलता है कि इसराइल की उनकी भूमि पर बहाली अंतः वह साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित किया जाएगा और एक बिल्कुल नई रचना में बनाया जाएगा। इसलिए हमने भविष्यवाणी साहित्य को इस कथानक को आगे बढ़ाते हुए देखा है जो ईश्वर के लोगों के प्रमुख विषय को छूता है कि भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की थी कि निर्वासन के बाद ईश्वर लोगों को एक नए रचनात्मक कार्य में पुनर्स्थापित करेगा। वह उन्हें अपनी प्रजा के रूप में उत्पन्न करेगा। वह एक नई वाचा स्थापित करके उनके साथ वाचा का संबंध स्थापित करेगा। और फिर वह इब्राहिम से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उन्हें उनकी भूमि पर पुनर्स्थापित भी करेगा, लेकिन अंतः ईडन के लिए और पहली रचना के लिए भगवान के इरादे को पूरा करने में, जो अंतः एक नए रचनात्मक कार्य में घटित होगा, एक बिल्कुल नई रचना जो पुनर्स्थापित करेगी उत्पत्ति 1 और 2 की परिस्थितियां और अदन की वाटिका की स्थितियां, अपने लोगों के लिए परमेश्वर का मूल इरादा। अब ईडन गार्डन और भूमि चित्रण का उल्लेख स्वाभाविक रूप से अगले विषय की ओर ले जाता है, और वह है मंदिर या उद्यान का विषय। याद रखें कि हमने उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में कहा था, अदन की वाटिका को एक अभयारण्य, एक ऐसा स्थान जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते थे, भगवान की उपस्थिति का एक विश्राम स्थान के रूप में देखा जाता था। जब आदम और हव्वा को आशीर्वाद और ईश्वर की उपस्थिति के स्थान बगीचे से निष्कासित और निर्वासित किया जाता है, तो ईश्वर इब्राहिम को चुनता है और फिर एक नए लोग इसराइल के लोगों को बनाता है, जिसके साथ वह एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करेगा। और इसका एक हिस्सा यह है कि इसराइल को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में एक तंबू और एक मंदिर बनाना है, उस स्थान के रूप में जहां परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के साथ विश्राम करेगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हमने मंदिर और ईडन गार्डन के बीच कई संबंध देखे हैं, जिससे कि मंदिर ईडन के एक लघु उद्यान की तरह है। मंदिर इस बात का एक सूक्ष्म जगत है कि भगवान अंतः पूरे ब्रह्मांड को भगवान की महिमा और उसकी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त उपस्थिति से घेरने का इरादा रखता है। भविष्यवक्ता भी स्वाभाविक रूप से उस समय की आशा करते हैं जब इसराइल ईश्वर के साथ अनुबंधित रिश्ते में भूमि पर वापस आ जाएगा और सृजन और ईडन की स्थितियां बहाल हो जाएंगी। परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में एक पुनर्स्थापित या पुनर्निर्मित मंदिर के रूप में भी रहेगी। और बहुत से भविष्य सूचक ग्रंथ अपने लोगों के साथ भगवान के निवास की बहाली या अधिक विशेष रूप से भगवान द्वारा एक मंदिर का निर्माण या निर्माण करने की आशा करते हैं जहां वह अपने लोगों के साथ रहेंगे। हमने पहले ही जकरयाह अध्याय 8 श्लोक 8 को देख लिया है। यह अक्सर वाचा के सूत्र से जुड़ा होता है, मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा, वे मेरे लोग होंगे। यह परमेश्वर के अपने लोगों के बीच में रहने के वादे की कहानी में आता है। बाद में जकरयाह अध्याय 14 में, जकरयाह का अंतिम अध्याय, भगवान ने अपने लोगों के साथ निवास करने का इरादा व्यक्त किया। नगर को परमेश्वर का निवास स्थान कहा जाएगा। अपने लोगों के साथ निवास के रूप में भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार की अभिव्यक्ति का संभवतः सबसे व्यापक विवरण ईजेकील अध्याय 40 से अध्याय 48 में पाया जाता है। एक काफी लंबा खंड जहां जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसका अधिकांश भाग एक विस्तृत विवरण के लिए समर्पित होता है। मंदिर और उसके माप और उसकी बनावट और उसके निर्माण और उसके कार्य के बारे में और वहां क्या होगा जब भगवान की उपस्थिति एक बार फिर से अपने लोगों के साथ विश्राम करेगी। यहेजकेल अध्याय 40 से 48 तक। लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह उसमें कुछ दिलचस्प पाठों पर ध्यान केंद्रित करना है। और स्पष्ट रूप से हालांकि मतभेद हैं, यहेजकेल 40 से 48 में मंदिर का विवरण और माप और विवरण स्पष्ट रूप से पिछले विवरणों एक किंग्स में मंदिर और एक सोडस में टेबरनेकल के विस्तृत विवरण की याद दिलाता है। लेकिन न केवल इसका इसराइल के मंदिर से संबंध है, बल्कि यहेजकेल एक तरह से कह रहा है कि भगवान का अपने लोगों इसराइल के साथ रहने का वादा अब पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि इसका ईडन गार्डन उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 के दिव्य स्थान या अभयारण्य से भी स्पष्ट संबंध है। उदाहरण के लिए ईजेकील अध्याय 43 और श्लोक 1। इस खंड का महत्व यह मंदिर के श्रृंगार और निर्माण और यह कैसा दिखेगा और इसके सभी अलग अलग पहलुओं और अदालतों आदि के विस्तृत विवरण के ठीक बाद है और सबसे पवित्र स्थान और फर्नीचर सभी चीजों का वर्णन है। आप मंदिर के वर्णन में अपेक्षा करेंगे जब यह अंतः पूरा हो जाता है अध्याय 43 और श्लोक 1 में। और वैसे यहेजकेल 40 से 48 तक एक सर्वनाशकारी प्रकार का दर्शन है। यहेजकेल इसे एक दर्शन में देख रहा है। वास्तव में उसे एक स्वर्गीय प्राणी द्वारा एक दूरदर्शी अनुभव के माध्यम से ले जाया गया और ये चीजें दिखाई गईं। लेकिन फिर अध्याय 43 और पद 1 से शुरू करते हुए फिर वह यह स्वर्गदूत जो इस प्रकार के दूरदर्शी दौरे पर यहेजकेल का मार्गदर्शन कर रहा है, वह मुझे द्वार पर ले आया, पूर्व की ओर का द्वार, और वहां इसराइल के परमेश्वर की महिमा आ रही थी पूर्व से। वह ध्वनि बड़े जल के शब्द के समान थी और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। तो अब अध्याय 40 से 42 में, अब जबकि मंदिर का निर्माण और वर्णन किया गया है, अब यह भगवान की महिमा के लिए एक बार फिर उसी तरह से तैयार है जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में एक बार सृष्टि का निर्माण हो गया था। सृष्टि मंदिर, अब भगवान आराम कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति उनके मंदिर में आराम कर सकती है। तो अब भगवान की उपस्थिति उनकी महिमा एक बार फिर से उनके मंदिर में निवास और विश्राम के लिए आती है। लेकिन मैं जिस पर ध्यान देना चाहता हूं, एक दिलचस्प विशेषता जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें वह यहां दिशात्मक संकेत है कि उसे मंदिर के द्वार पर लाया जाता है जो पूर्व की ओर है और भगवान की उपस्थिति मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व से आती है। यह याद दिलाता है, यदि आप दिलचस्प ढंग से याद करते हैं तो तथ्य यह है कि और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर है। तथ्य यह है कि उत्पत्ति अध्याय 3 में जब आदम और हव्वा को बगीचे से निष्कासित कर दिया गया था तो उन्हें पूर्वी प्रवेश द्वार से निष्कासित कर दिया गया था और दो देवदूत प्राणियों को तैनात किया गया था। दो करूबों को उस प्रवेश द्वार पर, पूर्वी प्रवेश द्वार पर, भगवान की उपस्थिति की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। अब भगवान की उपस्थिति एक बार फिर अपने मंदिर में निवास करने के लिए पूर्वी द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार से होकर आती है। स्पष्ट रूप से फिर से इससे पता चलता है कि ईडन गार्डन का मतलब एक मंदिर, भगवान का निवास स्थान था। तो अब भगवान की महिमा, उनकी उपस्थिति पूर्व के माध्यम से उनके मंदिर में निवास करती है, ठीक उसी तरह जैसे आदम और हव्वा को मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार से निष्कासित कर दिया गया था। ईजेकील में अन्य ग्रंथ हैं जो सुझाव देते हैं कि उद्यान या मंदिर ईडन गार्डन को प्रतिबिंबित करने के लिए है। उदाहरण के लिए अध्याय 47 में फिर से वह देवदूत जो मंदिर के इस दूरदर्शी दौरे पर ईजेकील का मार्गदर्शन कर रहा है, वह मुझे मंदिर के प्रवेश द्वार पर वापस लाया और वहां मंदिर की दहलीज के नीचे से पानी बह रहा था पूर्व की ओर, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था, और पानी मंदिर की दहलीज के दक्षिणी छोर के नीचे से वेदी के दक्षिण में बह रहा था। तो पानी की इस भाषा पर ध्यान दें, मंदिर से बहने वाली एक नदी, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 2 में ईडन से बहती थी। फिर वह मुझे उत्तरी द्वार से बाहर ले आया और मुझे बाहर से बाहरी द्वार तक ले गया। मुख पूर्व की ओर था और पानी दक्षिण की ओर से निकल रहा था। और फिर जैसे जैसे वह चलता है, जैसे जैसे वह इस दौरे पर जाता है, पानी और गहरा होता जाता है और नदी चौड़ी होती जाती है, जिससे अंत में श्लोक 5 में वह इसे पार भी नहीं कर पाता है। श्लोक 7, और जब मैं वापस आया तो मैंने नदी के तट पर एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़ देखे। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा में चला जाता है और जब वह समुद्र अर्थात ठहरे हुए जल के समुद्र में समा जाएगा तब वह जल ताजा हो जाएगा। जहां भी नदी जाती है झुंड में आने वाला हर जीवित प्राणी जीवित रहेगा, और जब ये पानी वहां पहुंचेगा तो बहुत सारी मछलियां होंगी। आप में से उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो मछली पकड़ना पसंद करते हैं। यह ताजा हो जाएगा और सब कुछ वही रहेगा जहां नदी जाती है। तो ईडन जैसी स्थितियों की वापसी पर फिर से ध्यान दें। पेड़ जो फल देते हैं, पानी जो जीवन देता है, वन्य जीवन से भरपूर, स्पष्ट रूप से ईडन गार्डन की प्रत्याशा और प्रतिबिंब है। श्लोक 12 इस खंड का अंतिम श्लोक जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, नदी के दोनों किनारों पर भोजन के लिए सभी प्रकार के पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते न मुरझाएंगे और न उनके फल नष्ट होंगे, परंतु वे प्रति माह नए फल लाएंगे, क्योंकि पवित्र स्थान से उनके लिए जल बहता रहेगा। उनका फल भोजन के लिए और उनकी पत्तियां उपचार के लिए होंगी। इसलिए भगवान का मंदिर, भगवान की उपस्थिति का स्थान, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण भूमि पर आशीर्वाद और जीवन के माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसलिए स्पष्ट रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 और ईडन जैसी स्थितियों की वापसी को दर्शाता है, क्योंकि भगवान अब मानवता के लिए अपने लोगों के साथ एक ऐसी भूमि में रहने के अपने मूल इरादे को पूरा करते हैं जो उनके लिए उपयुक्त वातावरण है, एक ऐसी भूमि जो फलदायी और एक ऐसी भूमि जो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में सृष्टि के लिए परमेश्वर के मूल इरादे में माना गया था। आखिरी विषय जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वह राजत्व का विषय है। हमने कहा कि इसराइल की कहानी में, हालांकि इसराइल को पुजारियों का राज्य होना था, निर्गमन के अनुसार मुख्य रूप से इसराइल का शासन करने का आदेश मुख्य रूप से डेविडिक राजा के माध्यम से पूरा किया जाना था, और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुना और परमेश्वर ने दाऊद से एक वादा किया जिसके माध्यम से परमेश्वर सारी सृष्टि पर अपना शासन स्थापित करेगा। यह अंतह डेविडिक राजा के माध्यम से उनकी भूमि पर इसराइल पर शासन कर रहा था। यह अंतह दाऊद के राजा के माध्यम से ही था कि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 की पूर्ति में परमेश्वर का शासन और उसकी संप्रभुता पूरी सृष्टि में फैल जाएगी। हमने कहा कि इसका प्रारंभिक बिंदु 2 शमूएल अध्याय 7 था। 2 शमूएल 7 में परमेश्वर एक वादा करता है, डेविड को कभी न खत्म होने वाला सिंहासन, जो एक पुनर्स्थापित डेविडिक राजशाही की बाकी सभी भविष्यवाणियों की आशाओं के आधार के रूप में कार्य करता है। और यहाँ तक कि दिलचस्प बात यह है कि डेविड को एक घर बनाना था, हालांकि यह उसका पूर्वज होगा जो घर का निर्माण करेगा। यहाँ तक कि यह उम्मीद भी कि डेविड का कोई पूर्वज घर बनाएगा, मंदिर और डेविडिक राजा के बीच संबंध को दर्शाता है। कुमा पहले से ही भजन अध्याय 2 जैसे ग्रंथों में हमने देखा कि डेविडिक राजा का शासन अंतः सार्वभौमिक होना था। फिर से उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में कि भगवान का शासन पूरी सृष्टि में व्यापक हो जाएगा, कि मानवता भगवान का उपाध्यक्ष होगी, संपूर्ण सृष्टि में उसके शासन का प्रतिनिधित्व करने और फैलाने के लिए शासक। भजन 2 में भी हम पाते हैं कि डेविडिक राजा का यही इरादा था। लेकिन फिर से मैं बस मुट्ठी भर भविष्यवाणी ग्रंथों को देखना चाहता हूँ जो यह अनुमान लगाते हैं कि पुनर्स्थापना के समय जब भगवान अपने लोगों को भूमि पर पुनर्स्थापित करते हैं, अपने मंदिर की स्थापना करते हैं, सभी चीजों को फिर से बनाते हैं और अपने लोगों के साथ एक नई वाचा स्थापित करते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दाऊद के राजा की पुनर्स्थापना भी शामिल है कि फिर से परमेश्वर दाऊद से किए गए अपने वादे को बहाल करके अपने लोगों पर शासन करेगा। इसलिए उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 55 में देख, जो कोई प्यासा हो वह जल के पास आए और जिनके पास रुपए न हो आओ मोल लो और खाओ। आओ बिना पैसे और बिना कीमत के शराब और दूध खरीदो। निर्वासन से बहाली की इस प्रत्याशा और उम्मीद के प्रकाश में यह इसराइल के लिए एक आह्वान है। आप उस चीज के लिए अपना पैसा क्यों खर्च करते हैं जो नहीं है, रोटी या उसके लिए श्रम जो संतुष्ट नहीं करता। मेरी बात ध्यान से सुनो और जो अच्छा है उसे खाओ और गरिष्ठ भोजन से प्रसन्न रहो। अपना कान लगाकर मेरे पास आओ, सुनो कि तुम जीवित रहो। मैं तुम्हारे साथ एक चिरस्थायी वाचा बांधूंगा, दाऊद के प्रति मेरा दृढ़ और निश्चित प्रेम। इसलिए पुनर्स्थापन के समय परमेश्वर दाऊद के साथ बनाई गई अपनी वाचा को पुनः स्थापित करेगा या बनाए रखेगा कि वह अपने उपशासनकर्ता के रूप में दाऊद के सिंहासन पर एक राजा होगा, उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में इसराइल पर शासन करेगा। और भगवान का इरादा था कि उसकी संप्रभुता और उसके राजत्व को पूरी पृथ्वी पर स्वीकार किया जाएगा। यिर्मयाह अध्याय 33 और पद 15, फिर से निर्वासन से बहाली की आशा करने वाला एक और पाठ। इसलिए अध्याय 33 और पद 15 मैं पीछे हटूंगा और श्लोक 14 पढ़ूंगा। प्रभु कहते हैं, वे दिन निश्चित रूप से आ रहे हैं जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। और यहाँ यह है, उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा उगाऊंगा और वह देश में न्याय और धर्म को क्रियान्वित करेगा। यहेजकेल अध्याय 37 जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अध्याय 36 और 37, अध्याय 40 से 48 में भगवान के लोगों की बहाली, नई वाचा, नई रचना, भूमि की बहाली और मंदिर की बहाली के ये सभी विषय शामिल हैं। अब अध्याय 37 और श्लोक 24 और 25 पर ध्यान दें, मेरा सेवक दाऊद उन पर राजा होगा, पुनर्स्थापित इसराइल पर, और उन सभी का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों का पालन करेंगे और मेरी विधियों के मानने में चौकसी करेंगे। वे उस देश में रहेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया है, जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते हैं। वे और उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां हमेशा वहां रहेंगे और मेरा सेवक डेविड हमेशा के लिए उनका राजकुमार होगा। तो स्पष्ट रूप से भूमि में इसराइल की बहाली डेविड के राजा के रूप में उन पर शासन करने से जुड़ी हुई है। फिर से की पूर्ति में उत्पत्ति 1 और 2, जहां परमेश्वर का शासन उसके उपशासनकर्ताओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। अब वह उपशासनकर्ता डेविड है जो इसराइल राष्ट्र पर परमेश्वर के शासन का विस्तार करेगा। फिर भी पूरे पुराने नियम में अभी भी संकेत हैं कि डेविड का यह नियम सार्वभौमिक होना है, न केवल फिलिस्तीन या इसराइल राष्ट्र पर बल्कि अंतः सार्वभौमिक होना है। हमने इसे भजन अध्याय 2 में पहले ही देख लिया है, जहां दाऊद को पृथ्वी के अंतिम छोर और सभी राष्ट्रों को उसकी संपत्ति के रूप में दिया जाना है। लेकिन अन्य संकेत भी हैं। उदाहरण के लिए दानियेल अध्याय 7 और श्लोक 14, जो फिर से एक प्रकार का सर्वनाशकारी दर्शन है जो दानियेल के पास है। और दानियेल अध्याय 7 और श्लोक 14 में दानियेल सबसे पहले अध्याय 7 के पहले भाग में इन चार जानवरों का एक दर्शन देखता है और वे प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन चार पशु आकृतियों की यह दृष्टि अंततः मनुष्य के पुत्र की दृष्टि से प्रतिस्थापित हो जाती है। और मैं दानियेल 7:13 और फिर आयत 14 पढ़ूंगा। जैसे ही मैंने रात्रि दर्शन में देखा, मैंने मनुष्य के पुत्र या इंसान जैसा एक व्यक्ति देखा जो स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहे चार जानवरों से भिन्न है। और वह उस प्राचीन के पास आया और उसके सामने उपस्थित किया गया। मनुष्य के पुत्र को प्रभुता, महिमा और राज सौंपा गया, और सभी लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं को उसकी सेवा करनी चाहिए। उसका प्रभुत्व एक चिरस्थायी प्रभुत्व है जो खत्म नहीं होगा। उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो मनुष्य के इस पुत्र पर ध्यान दे जो डेविडिक विषयों और डेविड से किए गए डेविडिक वाचा के वादे के साथ प्रतिध्वनित होता है और बाद में जाहिर तौर पर नए नियम में उठाया जाएगा। मनुष्य के इस पुत्र को उत्पत्ति 1 और 2 के वादे को पूरा करने में फिर से एक सार्वभौमिक प्रभुत्व या राजत्व दिया गया है कि भगवान के उपशासनकर्ता पूरी सृष्टि पर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। अब मनुष्य का यह पुत्र परमेश्वर के उपशासनकर्ता के रूप में अपना स्थान लेता है, जिसे अब सभी राष्ट्रों पर प्रभुत्व और महिमा और राजत्व दिया गया है, और यह प्रभुत्व चिरस्थायी रहेगा। शायद यह तथ्य भी कि अब उसे इन चार जानवरों पर प्रभुत्व दिया गया है, शायद मैदान के जानवर और सृष्टि के जानवर पर एडम के प्रभुत्व की सृजन भाषा को भी दर्शाता है। इसलिए डैनियल अध्याय 7 डेविड के संबंध में भविष्यवाणी साहित्य में पाए गए प्रभुत्व और राजत्व और शासन विषय को लेता है, लेकिन अब इसे संपूर्ण सृष्टि पर विस्तारित करता है। जकरिया अध्याय 9 और 10, हम सार्वभौमिक प्रभुत्व के बारे में भी पढ़ते हैं, जब जकरिया फिर से पुनर्स्थापना के समय की आशा करते हुए कहता है, बहुत आनंद मनाओ हे बेटी सियोन, जोर से चिल्लाओ हे बेटी यरूशलेम, लोग तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, विजी और विजी, दीन और गधे और बछेरे पर सवार, अर्थात गधे का बच्चा। वह एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नाश करेगा और युद्ध का धनुष भी काट डाला जाएगा। वह राष्ट्रों को शांति का आदेश देगा। उसका प्रभुत्व समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के छोर तक होगा, और यहाँ तक कि यहेजकेल अध्याय 14 और श्लोक 9 अंतिम अध्याय समाप्त होता है, मुझे खेद है, जकरिया समाप्त होता है अध्याय 14 श्लोक 9 समाप्त होता है इस संदर्भ में कि यहोवा सारी पृथ्वी पर राजा होगा। तो यह राजा डेविडिक राजा के माध्यम से है कि अंततः भगवान का राजत्व भगवान के उपशासनकर्ता के रूप में भगवान का राजत्व और उसका शासन संपूर्ण सृष्टि में फैल जाएगा और महसूस किया जाएगा। याद रखें, पाप के कारण सृष्टि अब शैतान का राज्य है और मनुष्य शैतान की शक्ति के अधीन है, उनके शासन को सींचते हैं और सच्चे राजा की अवज्ञा में ऐसा करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहां भगवान पृथ्वी को अपने सच्चे राज्य के रूप में पुनः प्राप्त करेंगे और इसे अपना राज्य बनाएंगे, और वह उत्पत्ति अध्याय एक और दो में सृष्टि की स्थितियों को बहाल करने में अपने उपशासनकर्ता डेविड के माध्यम से इस पर शासन करेंगे। और इसलिए जब ऐसा होता है तो भविष्यवाणी का पाठ दर्शाता है कि जब इसराइल बहाल हो जाएगा तब वे सभी राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनेंगे। एक बार जब परमेश्वर के लोग इब्राहिम से किए गए वादे की पूर्ति में और अंतः उत्पत्ति एक और दो में सारी सृष्टि की पूर्ति में बहाल हो जाते हैं तो अब सभी राष्ट्र परमेश्वर की संप्रभुता और महिमा को पहचान लेंगे। तो तब भविष्यवक्ताओं ने कहानी की निरंतरता और गति के हिस्से के रूप में भविष्यवक्ताओं ने समय की आशा की, भविष्यवक्ताओं ने उत्पत्ति एक और दो की पूर्ति में समय की आशा की, लेकिन इसराइल की कहानी की पूर्ति में भी अनुमानित समय जब इसराइल बहाल किया जाएगा, जहां इसराइल के साथ वाचा को बहाल किया जाएगा, इसराइल को सृजन में भगवान के इरादे को पूरा करने के लिए भूमि पर वापस लाया जाएगा, एक नया ईडन, फलदाई और आशीर्वाद का स्थान। दाऊद का राजा उन पर शासन करेगा और सारी सृष्टि में परमेश्वर का शासन फैलाएगा। मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि अब भगवान उनके बीच में निवास कर सकें। एक बार ऐसा हो जाने पर अब मोक्ष का आशीर्वाद सभी देशों में प्रवाहित हो सकता है। इसलिए याद रखें, ईश्वर को दो समस्याओं से निपटना होगा, इसराइल की पापपूर्णता की समस्या और अंतः समस्त सृष्टि की समस्या। तो भगवान जब वह इसराइल को उसकी भूमि पर पुनर्स्थापित करता है, जिसमें एक डेविडिक राजा, एक नई रचना, एक नया ईडन, आशीर्वाद का स्थान, भगवान के एक नए वाचा के रिश्ते में उन पर शासन करता है और भगवान फिर से मंदिर में अपने लोगों के साथ रहते हैं, तब सभी राष्ट्रों में आशीर्वाद प्रवाहित हो सकता है। संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति एक और दो की पूर्ति में अपने लोगों के लिए और उत्पत्ति अध्याय एक और दो से उनकी रचना के लिए भगवान के मूल इरादे की पूर्ति में नवीनीकृत की जाएगी। इसलिए भविष्यवक्ता हमें प्रश्न के साथ छोड़ देते हैं, वे अभी भी कहानी छोड़ते हैं, अभी भी अधूरा है। यह अपेक्षा कैसे साकार होगी? अपनी भूमि पर पुनर्स्थापित लोगों की सभी उम्मीदें कैसे होंगी? एक नई रचना, एक नया ईडन, उन पर भगवान के उपशासनकर्ता का शासन होगा, उनके शासन को पूरी सृष्टि में विस्तारित किया जाएगा, उनके बीच में भगवान के पुनर्निर्मित मंदिर के साथ परमेश्वर के साथ एक अनुबंधित संबंध, वह अपेक्षा कैसे साकार होगी? परमेश्वर अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेगा? वह कहानी का निष्कर्ष कैसे लिखेगा? खैर, कहानी का निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, यह देखने के लिए हमें नए नियम की प्रतीक्षा करनी होगी। और कहानी पर हमारे अगले कुछ व्याख्यानों में हम नए नियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कहानी का समापन कैसे किया जाएगा, इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाएगी, यह अब कैसे पूरा होगा। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन द्वारा बाइबल की कहानी पर दिए गए 6 में से तीसरा व्याख्यान था।